आप सबको प्रीति जबल का नमस्कार। आज SBS हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर एक तरफ तो रूह कांप जाती है, वहीं दूसरी तरफ मिलती है बुलंद हौसले और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल। आज हम मुलाकात करेंगे नीतू से, जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया आई हुई हैं अपनी कहानी सबके साथ शेयर करने के लिए। जब नीतू 2.5 साल की थी तब उनके पिता ने उन पर तेजाब फेंक दिया था जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। यह घटना आगरा शहर के एक कमरे वाले मकान में घटी जहां एक रात को नीतू अपनी माँ गीता और अपनी बहन कृष्णा के साथ सो रही थी। उनके पिता इंद्रजीत ने जानबूझकर उन तीनों पर एसिड उड़ेल दिया जिससे गीता और नीतू बुरी तरह से घायल हो गई और छोटी बच्ची कृष्णा बच नहीं पाई। आज नीतू हमें बताएंगी कि कैसे उन्होंने अपनी माँ गीता के साथ इस दर्दनाक हादसे से निकलकर अपने जीवन को एक नया मुकाम दिया। तेजाब से इनका बदन जरूर झुलस गया लेकिन हौसला अभी भी बरकरार है। नीतू कहती हैं कि वे पीड़ित नहीं हैं, उत्तरजीवी हैं और केवल जीवित नहीं हैं बल्कि संपन्न हैं और खुश हैं। उनकी कहानी एक ऐसी आशा की कहानी है जो दूसरों को जीवन में निराशा नहीं सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करती है। चलिए हाथ मिलाते हैं इन साहसी महिला से। नीतू जी नमस्कार। आज SBS हिंदी पर आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है और हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू प्रीति कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।
नीतू, इस घटना के बाद हुए संघर्ष के बारे में आपको जो भी याद है हमें जरूर बताएं।
हाँ, मेरे ऊपर 1992 में अटैक हुआ था, एसिड अटैक, जो कि मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीन लोगों के ऊपर हुआ था। अटैक मेरे पापा ने किया था, क्योंकि रीजन ये था हम तीन बहन हो गए थे तो जो मेरे पापा के फैमिली वाले थे, जो आसपास के लोग थे, मतलब वो बोलने लगे थे अरे तुम्हारे पास तीन लड़कियां हो गई हैं और इनकी कैसे तुम शादी ब्याह करोगे, मतलब ये तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तीन तीन तुम्हारे पास बेटियां हैं। तो हम, मेरी मम्मी, जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो मेरी मम्मी कुछ टाइम के लिए नानी के घर चली गई कि चलो मैं 2-4 दिन के लिए नानी के, अपनी माँ के चली जाती हूँ, हो सकता है चीजें सही हो जाए। तो फिर उसी बीच में मेरे पापा गए रात में 1 बजे, उन्होंने नानी के यहाँ पे जाके हम तीनों लोगों का तेजाब डाला था।
नहीं तो हमने सुना है कि आपकी माताजी ने आपके पिताजी को माफ कर दिया है, वह आपके साथ ही रहते हैं।
मैम, मतलब माफ तो उन्होंने नहीं किया है और मुझे लगता है कि वो माफ कभी नहीं कर पाएंगी, पर एक जब अटैक के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आई मेरी मम्मी के लाइफ में, जो कि जो मेरी छोटी बहन थी कृष्णा, उसकी अटैक में ही डेथ हो गई, मेरी दोनों आंखें चली गई और मेरी मम्मी की भी एक आंख चली गई, और एक समाज का प्रेशर था मेरी मम्मी के ऊपर। तो फिर मेरी मम्मी ने मतलब उन्हीं के साथ में ठीक समझाता रहना।
और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको कैसा लगता है?
कैसा लगता है ये तो क्या है, मतलब वही है कि अब जो होना था उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वही था कि हमने अपनी लाइफ में डिसाइड किया था कि हम अपने जो पीछे वाला है उसको तो हम सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ चीजों को सही करके, पॉजिटिव सोच के, और जो जो मतलब विचारधारा है उसको बदल के हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ के उद्देश्य ढूंढना स्टार्ट किया था पॉजिटिव थिंकिंग के साथ।
तो उन्हें कोई पछतावा है?
हाँ, उन्हें पछतावा है, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि जब जब वो मुझे देखते हैं तो उनको मतलब रियलाइज होता है, जब मुझे लगता है कि उनको जेल से ज्यादा सजा उनके लिए ये है कि जब जब वो मुझे देखते हैं, जब जब वो पछतावा करते हैं और अपने आप को कोसते हैं।
जी, तो नहीं तो इस घटना के बाद सामान्य जीवन आसान नहीं रहा होगा, लेकिन आप दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। आप इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाती हैं?
मैं कई बार ऐसा हुआ था कि जब बहुत सारी जो प्रॉब्लम मेरी मम्मी फेस कर रही थी तो मेरी मम्मी के मन में कई बार आया था कि हम सुसाइड कर लें, लेकिन जब मेरी मम्मी मेरी शक्ल देखती थी तो उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती थी कि मैं अपनी मतलब बिटिया को छोड़ के ऐसे कैसे कर सकती हूँ, और इसको किसके सहारे छोड़ के जाऊंगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब वही था कि एक दूसरे की ताकत बने, और मेरी मम्मी ने मुझे मतलब काफी प्यार किया, मेरी मम्मी का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा, तो एक दूसरे की ताकत बने और हमने आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में कोशिश की।
नीतू, आपकी माँ गीता जी ने अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ मिलकर एक कैफे भी खोला था, उसके बारे में जरा हमें बताएं।
हाँ मैम, हम लोगों ने 2014 में आगरा में कैफे सिरोज हंगआउट खोला था, जो कि 5 लोगों ने हम मिलके रन किया था उस कैफे को। मैं, मेरी माँ, रूपा, रितु, चंचल, हम 5 लोगों ने उसको रन किया था। उसका पर्पस खोलने का यही था कि जो एसिड अटैक लड़कियां हैं उनको जॉब दिया जाए, और जो समाज में जो एसिड वायलेंस को लेके जो हिंसा होती है उसके अगेंस्ट मतलब लोगों को मैं जागरूकता कर पाए, एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए हम लोग।
जी, तो गीता जी की कहानी पर तो फिल्म भी बनी है जिसे ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया गया था।
गीता गीता हाँ गीता है मूवी का नाम, गीता।
हाँ, उसका अनुभव कैसा रहा आपका?
हम मैम 2015 में एमा से मिले थे, सरोज में ही, मैं और मेरी मम्मी। तो इन्होंने फिल्म की बात हमारे सामने रखी और हमें अच्छा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि हमें ये लगा था कि अब जब ये फिल्म बनके तैयार हो जाएगी, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इसको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, और जब लाखों करोड़ों लोग देखेंगे तो उसमें से 100 लोगों ने भी मूवी के थ्रू उस मूवी से कुछ सीख लिया, जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारी स्टोरी है, उनसे उनकी कहीं ना कहीं विचारधारा बदल जाए, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो हमने सर्वाइव किया है आज तक।
तो ज्यादातर लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आपसे मुलाकात
रिएक्शन,
होती है तो?
हाँ रिएक्शन, पहले का रिएक्शन तो बहुत खराब था, जब जैसे कि मेरे ऊपर 1992 में के अटैक हुआ था, तो उस टाइम का मतलब बहुत खराब था रवैया, क्योंकि लोग ये बोलते थे कि अरे इनकी शक्ल इतनी खराब हो गई है, मेरे बारे में बोलते थे लोग, कौन इनसे ब्याह करेगा, कौन इससे शादी करेगा, कौन इससे बात करेगा, कौन इसको अपनाएगा, मतलब तो बहुत तरीके के टॉर्चर थे भाई। ताकि अटैक एक बार हुआ था, लेकिन समाज ने हर एक मोमेंट पे अटैक किया था हम लोगों के ऊपर अपनी वाणी से।
तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपकी क्या कोशिश रही?
हम लोगों ने कैफे रन करने के बाद में धरना भी दिया था आगरा में, दिल्ली में, और हम लोगों ने अपील डाली थी कि एसिड की सेल को रोका जाए, और क्या बोलते हैं, हम लोगों ने जहाँ जहाँ तेजाब मिलता था हम लोगों ने वीडियो भी बनाई, और हमने काफी सारा काम किया कि एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए।
तो क्या इंडिया में कानून में कोई बदलाव आ रहा है, या जिससे एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं उनको कोई कानूनी, आर्थिक या किसी अन्य तरह से मदद मिलती है?
हाँ, क्योंकि जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तो काफी मतलब लॉ आए थे गवर्नमेंट पे भी, जो कि एसिड पे कोई बैन नहीं था, तो एसिड पे बैन लगाया कि एसिड मिलेगा भी तो प्रूफ पे मिलेगा, आईडी प्रूफ दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या क्यों चाहिए, क्या करना है, और जो कि अटैक के बाद में कोई कंप्लेन मतलब नहीं होती थी, इतनी सीरियस नहीं लेती थी पुलिस वाले, तो फिर कंप्लेन भी होने लगी थी, उसमें भी लोग सीरियस होते थे अटैक के बाद में, और जो अटैक के बाद में जो इलाज मिलना चाहिए था अच्छे से अच्छा उनको इलाज मिलने लगा, एक मतलब काफी लॉ आए, और जो जिस समाज था, जिस समाज में हम रहते थे, कि जो कि जिस समाज में हम लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे लोग, और जिस ऑटो में हम बैठ रहे हैं उसमें बैठना भी पसंद नहीं करते थे, तो धीरे धीरे करके मतलब धीरे धीरे आया, लेकिन बहुत चेंज आया उस समाज में।
तो जी, एसिड हमलों और अन्य हिंसा के पीड़ितों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के लिए क्या करने की आवश्यकता है?
हम मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम करते हैं सही और गलत पहले हमारे माइंड में होता है, जब हम उसको बाहर क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, जो हमारी बुरी थिंकिंग है, अगर विचारधारा बदलेगी तो रियलिटी बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
बढ़िया, तो भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं नीतू जी, आगे जाकर क्या करने की इच्छा है?
मैम, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मैं इस फिल्म के साथ साथ टूर करना चाहूंगी, और जहाँ भी मूवी स्क्रीनिंग होगी वहाँ पे लोगों से मिलूंगी, और उनके बीच में एक बदलाव की बात कर पाऊंगी।
सही है नीतू, जब तक हमारी सोच में तेजाब है तब तक कोई ना कोई गीता और नीतू और कृष्णा की जिंदगी में इस तरह के हादसे होते रहेंगे। वक्त आ गया है कि सोच बदलने का। नीतू, हमारी आशा है कि आप इसी तरह हौसला बनाए रखें और हमेशा अपनी कोशिशों में सफलता पाएं। धन्यवाद।
थैंक यू मैम।
नीतू और गीता की कहानी को लोगों तक पहुंचाने वालों में से एक हैं मेलबर्न की रहने वाली एमा मेसी स्टॉच, जिन्होंने SBS हिंदी के साथ बातचीत की। एमा इज अ को प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री गीता अलॉन्ग विद दीपांजलि राव एंड नयना भंडारी। शी स्पोक ब्रीफली अबाउट हर कनेक्शन विद गीता एंड नीतू एंड देयर स्टोरी।
Okay, so in 2015, I actually went to India for the first time along with my co-producer, Nana Bhandari, who's a resident in Melbourne and very involved in the community and has her own cultural group. And we both had a shared interest in kind of stories of women's empowerment and with a particular focus on family violence. And so we kind of went with this idea that we were going to cover a couple of stories, maybe four, to show the journey of someone that turned their trauma into activism. And it was by chance that we sort of did a bit of research and found out very early on in the history of Shiro's about this wonderful collective of women that were running this cafe. And we actually went there, and on that day, actually, only Gita and Neetu were present. So it was kind of like by chance we connected to them, and we felt actually their story does the whole job of what we wanted to do. And we had a chat to them to see if they'd like us to film them. And, you know, at that time, maybe we were thinking, okay, look at the activism they're doing in Shiro's. But that night, Gita also invited us back to her home where we also discovered that the perpetrator of the crime was still living with them. And this opened up a whole thing for me about the truth of family violence, and that actually there is no, you know, this kind of impression we have of the ideal warrior fighter taking on the system and living happily ever after is a rare occurrence. And I felt that actually Gita and Neetu are a living truth of what it is really, really like to be an activist and to fight the system for, you know, their dreams and be determined to overcome their trauma and, yeah, recreate their lives.
Thank you, Emma, for your contribution.